शांति। तो सभी को अपना स्टूडेंट लाइफ याद आ रहा है। एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, खेलना है, कूदना है, एक्सरसाइज करना है, डांस करना है, एंजॉय करना है और अच्छी तरह से खाना खाना है। यही कर रहे हैं ना आप? तो अभी हम फिर से एक एक्सरसाइज करेंगे और स्टार्ट करते हैं। तो सभी रेडी हैं? तो आप सब जो एक्सरसाइज करेंगे तो सब पहले अपने राइट हैंड को आगे करेंगे और उसे ऊपर ले जाएंगे, फिर पीठ पर ऐसे थपथपाते हुए कहेंगे कि वारे मैं। और अच्छी तरह महसूस करिए कि आप बहुत यूनिक और स्पेशल हैं, तो कहेंगे वारे मैं। अच्छा, तो याद रखिए कि जब आपको कोई अप्रिशिएट ना करे या जब भी आप लो फील करते हैं तो अपने आप को ही ऐसे शाबाशी देते हुए अपने आप को ही अप्रिशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा, और एक एक्सरसाइज करेंगे कि आपके पड़ोस में जो बैठे हैं तो जैसे आप स्पेशल हैं, यूनिक हैं, तो वैसे वो भी बहुत ही स्पेशल है। हम सब स्पेशल रचना है परमात्मा के। तो पहले आप ध्यान से सुनेंगे और फिर ये एक्सरसाइज करेंगे। तो आपके पड़ोस में जो है आप बहुत प्यार से उनको हैंड शेक करेंगे और ये तीन स्टेटमेंट्स आप कहेंगे, आई सर्व यू, आई केयर फॉर यू, आई रिस्पेक्ट यू। तो एक दूसरे को बहुत प्यार से देखेंगे और फिर हैंड शेक करते हुए बोलेंगे, आई सर्व यू, आई केयर फॉर यू एंड आई रिस्पेक्ट यू। चलिए स्टार्ट, बहुत प्यार से करिए। अच्छा, तो फ्रेंड्स हो गए स्कूल में फ्रेंड्स भी होते हैं ना बहुत सारे, तो ये सब आपके फ्रेंड्स हैं, स्पिरिचुअल फ्रेंड्स के। अच्छा, तो अब हम आते हैं आज का जो विषय है, इनर पावर्स फॉर सेफ्टी। तो आप मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम इम्पोर्टेंट समझते हैं और उसकी हम रक्षा करते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं? हाँ जी, शांति। वो यहां आकर आप कह रहे हैं वाह, हाँ वाह भी ऐसे ही कहेंगे। अच्छा, और कौन सी ऐसी मटेरियल चीजें हैं जिसको हम प्रोटेक्ट करेंगे? हमारे घर वाले, राइट? हाँ, मनी, पोस्ट, मनी, राइट? हाँ, हेल्थ, बिल्कुल सही। और मोबाइल, हाँ प्रोटेक्ट करेंगे, राइट? गाड़ी प्रोटेक्ट करेंगे, और क्या प्रोटेक्ट करेंगे? हाँ जी जी, सेल्फ को प्रोटेक्ट करेंगे। हाँ, ऐसी लैंग्वेज आप वहां भी बोलेंगे जब आप अपने अपने क्षेत्र पे जाएंगे तब। हाँ जी, पीस, बच्चा, चिल्ड्रन को, बच्चों को प्रोटेक्ट करेंगे, मॉरल वैल्यूज को प्रोटेक्ट करेंगे। आप नोट करो कि जो भी इम्पोर्टेंट है, जो भी वैल्यूबल चीजें हैं, तो उसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी रखते हैं। जैसे ज्वेलरी शॉप्स हैं तो वहां पर भी सिक्योरिटी होते हैं, एटीएम है, एटीएम में भी बाहर सिक्योरिटी होता है, बैंक, मॉल्स, तो जहां भी है ना, बिल्डिंग्स, तो जहां भी कीमती चीजें हैं और जहां इम्पोर्टेंट चीजें हैं तो वहां पर सिक्योरिटी होती है, है ना? पावरफुल लोग होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, रोड पे कौन सी चीजों की हम रक्षा करेंगे या रोड पर हम कौन सी चीजों को वैल्यूबल समझते हैं? हाँ जी, लाइफ को, राइट? और रूल्स को प्रोटेक्ट करेंगे. अच्छा, और हाँ जी, खुद को प्रोटेक्ट करेंगे. ड्राइवर है, ड्राइवर्स को ना रोड पर कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, वैल्यूबल है, तो ड्राइवर है ना. पेडेस्ट्रियंस है, जो पैसेंजर्स है, रोड्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर्यावरण है, एनवायरमेंट है, इस सबको हम प्रोटेक्ट करेंगे. सबको प्रोटेक्ट करेंगे ना, ये सब चीजों को. लेकिन देखा जाता है कि आज जो आंकड़े हमें बताते हैं, जो फिगर्स, रियलिस्टिक फिगर्स जो हमें बताते हैं, वो बताते हैं कि सबसे ज्यादा देखा जाता है मौतें जो होती हैं, तो वो रोड एक्सीडेंट्स के वजह से होती हैं. यानी जो बहुत कीमती है लाइफ, तो उसका प्रोटेक्शन बहुत कम है. और देखा जाता है हर साल 13 लाख से ज्यादा लोग मृत्यु को पाते हैं रोड एक्सीडेंट्स में. इसका मतलब ये हुआ, फिगर्स ये कहता है कि हर 25 सेकंड में एक मौत हो रही है. और इसमें भी इंडिया नंबर वन है रोड एक्सीडेंट्स में. तो आपको क्या लगता है, ये फिगर्स कुछ चेंज होने चाहिए कि नहीं? तो आप ही हैं जो ये मशाल लेकर जाएंगे, जो कुछ करके दिखाएंगे, है कि नहीं? पान का बीड़ा उठाएंगे, कौन उठाएंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छा. फिर से अपने आप को शाबाशी दे दीजिए. वेरी गुड, है ना. हाँ, आप जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसका स्लोगन ही है, व्हेन आई चेंज द वर्ल्ड चेंजेस. अगर मुझे ये विश्व को बदलना है, तो मुझे कहाँ से शुरू करना है? अपने आप से. तो जब आपके अंदर आ गया, तो सबके अंदर आ ही जाएगा. तो ये आंकड़े हैं रोड एक्सीडेंट्स और रेल एक्सीडेंट्स के. और इसके पीछे जो नुकसान होता है या भुगतना पड़ता है, तो हम सब जानते हैं. और जनरली बहुत युवा पीढ़ी है जो इसके शिकार होते हैं, जो विक्टिम्स बनते हैं. तो अब हमें करना क्या है? तो अभी हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं, सेफ्टी. तो सेफ्टी के लिए हमें किसको सेफ रखना है? रोड्स को. हमने अभी डिस्कस किया कि रोड्स को हमें सेफ रखना है, पर्यावरण को सेफ रखना है, हमें जो भी पेडेस्ट्रियंस है, ड्राइवर्स हैं, सबको सेफ रखना है. अब आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं, आपको क्या लगता है कि एक्सीडेंट्स का रीजन, ये दो में से ज्यादा कौन सा भारी रीजन है? एक है टेक्निकल इश्यूज, यानी हो सकता है व्हीकल में कुछ प्रॉब्लम है, रोड्स में कुछ प्रॉब्लम है, वेदर में कुछ प्रॉब्लम है. और दूसरा है बिहेवियरल इश्यूज, यानी हो सकता है किसी जो चलाने वाले हैं, उन्होंने रैश ड्राइव कर लिया, या ड्रिंक एंड ड्राइव कर लिया, या अपसेट मूड में ड्राइव कर लिया. तो आपको क्या लगता है कि रीजन ज्यादा? हाँ जी, सभी को लगता है बिहेवियर के वजह से ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं. तो अगर हम एटीट्यूड के वजह से, तो अगर हम एक्सीडेंट्स को देखते हैं रीजंस, तो जैसे अभी हमने कहा कि हो सकता है रोड की क्वालिटी ठीक नहीं है, व्हीकल ठीक नहीं, जो भी है, लेकिन हर रीजन के पीछे, रूट रीजन, मूल कारण, कोई ना कोई व्यक्ति ही है. रोड बनाने वाले भी कौन? व्यक्ति है. तो अगर रोड बनाने में मिलावट कर दिया, है ना, अगर रोड बनाने में हेरा फेरी कर दिया, लॉज तोड़ने वाले, बनाने वाले कौन? अगेन ह्यूमंस, है ना, इंसान ही है. तो हर रीजन के पीछे भी रीजन क्या है? तो एक इंसान ही है. तो अगर हमें सचमुच प्रोटेक्शन चाहिए, तो इंसान को अच्छी तरह प्रोटेक्ट करना है, लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, तो हमें किस चीज पे हमें ज्यादा काम करना होगा? किस चीज पर हमें ज्यादा ध्यान देना होगा? क्या लगता है आपको? हाँ जी, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर हमारा फोकस हो. ह्यूमन बिहेवियर. समझो अभी एक उदाहरण के रूप से अगर लेंगे, समझो आज आप बहुत गुस्से में है, आपका कुछ भी काम ठीक नहीं चल रहा है, और ऐसे में आपको कहा जाए कि चलो अभी आपको आबू रोड से किस किस को आता है ड्राइव करना, अच्छा आपको ड्राइव करना है आबू से या माउंट से नीचे तक, तो आपके ड्राइविंग में कुछ फर्क पड़ेगा जब आप गुस्से में हैं और आप ड्राइव कर रहे हैं? फर्क पड़ेगा? जो ड्राइव कर रहे हैं वो बताएं, फर्क पड़ेगा? पड़ेगा. अगर समझो आपका मूड बहुत उदास है, अपसेट है, तो फर्क पड़ेगा? और अगर मूड बहुत अच्छा है, बहुत ही खुशहाल है, तो बहुत शानदार ड्राइविंग होगा. अच्छा, बढ़िया. तो देखो, यानी कहने का भाव है कि हमारा जो मूड है वो अफेक्ट करता है केवल ड्राइविंग ही नहीं, बल्कि आपको लगता है हमारे कार्य क्षमता में भी असर होगा. जो भी काम हमको दिया जाएगा, अगर मूड हमारा अच्छा नहीं है, ऊपर नीचे है, तो हम जो भी काम करेंगे उसमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, है ना? तो इसका मतलब ह्यूमन एलिमेंट यानी ह्यूमन मूड को ठीक रखना होगा. एक किस्सा शायद आप सब जानते ही होंगे, बताते हैं कि एक मैरिज पार्टी, वो बस में जा रहे थे और पूना से मुंबई उनका ट्रैवल हो रहा था, कसारा घाट से उनको पास होना था, रात का समय था. तो ड्राइवर ने उनको कहा कि थोड़ा मुझे हॉल्ट देंगे तो मुझे भोजन करना है, पर वो मैरिज पार्टी वालों को बहुत घाई थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको जल्दी नीचे पहुंचना है इसलिए आपको ड्राइव करना है. तो वो ड्राइवर ने कहा कि नहीं, मुझे थोड़ा तो, मुझे भूख लगी है तो खाना खाने को टाइम दे दो. लेकिन उन लोगों ने उसकी जरा भी नहीं सुनी, हमने आपको पे किया है, आपको सुनना पड़ेगा हमारा, हमको जल्दी पहुंचना है, और ऐसे करके मारामारी भी किया और वो ड्राइवर ने गाड़ी चलाया. अब आप सोच सकते हैं क्या क्या होगा. अब ऐसे गुस्से में वो जब गाड़ी चला रहा था तो उसके मन में विचार बहुत आ रहे थे कि तुमने मुझे खरीद लिया है, तुमने खरीदा नहीं है, अब देखो मैं भी क्या करता. तो गुस्से में उसने क्या किया, रात को, ये रियल इंसिडेंट है, कसारा घाट के खाई में पूरे बस को उतार दिया और पूरे बस में पैसेंजर्स सभी मर गए और वो एक ड्राइवर ही लास्ट स्टेजेस में थे. और तभी आरटीओ ऑफिसर ने उनका इंटरव्यू लिया, पूछा कि, क्योंकि उन सबको लगा कि शायद ड्राइवर ने पिया हुआ था और इसलिए एक्सीडेंट हुआ, तो उनको पूछा कि ये क्यों हुआ एक्सीडेंट. तब पता चला ड्राइवर तो होश में थे और ड्राइवर ने कहा कि मुझे पता नहीं उस समय मुझे क्या हो गया था, मुझे इतना गुस्सा आ गया था, तो मैंने सोचा इन सबको सबक सिखाऊं. उसमें उसकी जान को भी खतरा था, जैसे अभी श्रेया बेन ने बताया ना, हेट्रेड, जब हेट है तो सबसे पहले नुकसान, वो जहर किसको पिलाते हैं? खुद को पिलाते हैं. दूसरे को नुकसान हो या ना हो बाद में की बात है, लेकिन खुद को पहले तकलीफ होती है. तो ऐसे ही उसने गुस्से में बिना सोचे उसने सचमुच ऐसा काम किया जो उसकी भी जान आखिर चली गई. तो इससे पता चलता है कि अगर हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, व्यक्ति को प्रोटेक्ट करना है, तो हमें व्यक्तियों को एम्पावर करने की जरूरत है कि नहीं? हमें शक्तियों की जरूरत है. तो ये शक्तियां कौन से मार्केट में मिलेंगी, कहां मिलेंगी? हाँ जी, आबू के मार्केट में, यहां पर मिलेगी शक्तियां. तो एक बार एक डिस्कशन हुआ था, कुछ कहते हैं कि कुछ राक्षस थे और वो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि उनके हाथ में एक बहुत अच्छा ट्रेजर आया और वो ट्रेजर था गुणों का, वो ट्रेजर था पावर्स का. और उनके मन में ये ख्याल आया कि अगर ये पावर्स अगर मनुष्यों के हाथ में आ जाए ना, तो वो लोग सुप्रीम हो जाएंगे हमारे से, वो लोग हमारे से आगे चले जाएंगे, इसलिए इसको है ना कुछ भी करके छिपा लेना चाहिए, मनुष्यों के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए. सॉरी. तो उन्होंने सोचा कहां इसको छिपाए, तो उन्होंने मीटिंग रखा और मीटिंग में डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं कि आसमान की ऊंचाई में छिपा देते हैं। तो किसी राक्षस ने कहा कि नहीं नहीं, आज जो मनुष्य है इतना होशियार है कि आसमान की ऊंचाई तक पहुंच सकता है, तो फिर कहां छिपाए। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया ऐसा करते समुद्र की गहराई में उसको छिपा लेते हैं। फिर किसी ने कहा नहीं नहीं, मनुष्य इतना होशियार है कि वहां भी पहुंच जाएगा। फिर कहां छिपाए कहां छिपाए। तो आखिर उनको एक आइडिया क्लिक हुआ और उन्होंने डिसाइड किया कि हम मनुष्य के अंदर ही छिपा लेते हैं। मनुष्य सब जगह देखेगा परंतु अपने अंदर नहीं देखेगा, इसीलिए उसके हाथ में शक्तियां कभी आने वाली नहीं है। परंतु आबू में आ गए तो अभी सबसे पहली पहचान, आज मॉर्निंग लेसन क्या था आपका? नो योर सेल्फ, है ना। तो सब अपने अंदर ही झांक रहे हैं और वहीं हमारे सारे ट्रेजर्स है। कहते कि व्हेन नोबडी एल्स सेलिब्रेट्स यू, लर्न टू सेलिब्रेट योरसेल्फ। व्हेन नोबडी एल्स कॉम्प्लीमेंट्स यू, देन कॉम्प्लीमेंट योरसेल्फ। इट इज नॉट टू अप टू अदर पीपल टू कीप यू एनकरेज्ड, है ना। दूसरे आपको प्रोत्साहित करे, दूसरे आपको मोटिवेट करे, ऐसा आप एक्सपेक्ट मत करो। इट्स नॉट अप टू अदर पीपल टू कीप यू सेफ, it's up to you. If you do not love yourself, then who will? If you do not keep yourself safe, then who will? है कि नहीं? अगर आप ही अपने आप से प्यार नहीं करते हो तो दूसरा फिर आप किससे एक्सपेक्ट करेंगे, किससे एक्सपेक्ट करेंगे? अगर आप अपने आप को सेफ नहीं रखते हो तो और कौन करेगा, कौन आपको सेफ रखेगा? तो आपको ये जिम्मेवारी अपने आप को सेव करने की और अपने आप से प्यार करने की ये जिम्मेदारी उठानी है। देखिए, हमारी रक्षा करने वाले जो हम देवी देवताओं को प्रार्थना करते हैं, वो भी बिना हेलमेट के अपने वाहन पर नहीं चढ़ते, या अपने वाहन पर चढ़े भी तो वाहन आगे नहीं बढ़े, है ना। तो हमें भी क्या करना है, अपने हेड को संभालना है, अपने सिर को संभालना है। तो जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं उसे हमें जरूर एडॉप्ट करना है। और अब हम देखते हैं इनर पावर्स क्या है। आपने देखा होगा देवियों को आठ भुजा दिखाते हैं, श्री गणेश को भी अष्ट विनायक कहते हैं। तो पता है ये आठ नंबर किसका प्रतीक है? तो ये शक्तियों का प्रतीक है, ये इनर पावर्स का प्रतीक है। तो ये आपको मिलेगा आपके अंदर ही। तो सबसे पहला है पेशेंस। तो हम सब जानते हैं कि पेशेंस किसके पास है, है पेशेंस। ये बहुत ही रेयर वर्च्यू है ना। क्योंकि आज के समय में बार बार कानों में क्या आता है, जल्दी करो। कहते कि एक बार है ना, एक व्यक्ति भगवान से प्रार्थना कर रहा था, भगवान से मांग रहा था, ओ गॉड प्लीज गिव मी पेशेंस, हे भगवान प्लीज मुझे धीरज देना, ये गुण देना, पर थोड़ा जल्दी करो, हरी अप प्लीज, है ना। तो आज पेशेंस जो है वो बहुत रेयर कमोडिटी हो गया है, रेयर वैल्यू हो गया है। पर पेशेंस क्या है, इसको अच्छी तरह समझते हैं। पेशेंस अगर हमें सीखना है तो हमें प्रकृति से सीख सकते हैं पेशेंस। देखिए प्रकृति, उसका पेस देखिए, आराम से सब कुछ होता है, ऋतुएं बदलती हैं। अगर कोई बीज हमने बो लिया है तो फिर आज बो लिया तो कल ही उसको निकाल के देखेंगे कि वो अंकुरित हुआ है कि नहीं, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। थोड़ा हमें पेशेंस रखना होगा कि वो समय पर जितना उसको आवश्यक है वो समय पर अपने आप अंकुरित होगा, समय पर अपने आप वो पौधा बाहर आएगा। ये सब समय पर होता है। सो यू हैव टू लर्न फ्रॉम नेचर, प्रकृति से सीखना है कैसे पेशेंट हमें रहना है। कहाँ कहाँ, बॉम्बे कहाँ? अच्छा, तो ज्यादा पेशेंस है बॉम्बे वालों में। अच्छा अच्छा, देखिए पेशेंस का मतलब क्या है। So patience is not just waiting, but patience is to have a good attitude while waiting. Patience is to have a good attitude while waiting. Mana intezar karna hi nahi, balki intezam karna. Jaise dekhi traveling mein hamara samay agar bahut jata hai, to ek hai hame feel hota hai ki hamara time waste ho gaya. Par intezam hum kaise kar sakte hain? हम इंतजाम भी कर सकते हैं जो वेस्ट हो रहा है, क्योंकि पावर्स का मतलब क्या है? पावर्स का मतलब है आपको अच्छा फील हो रहा है, यू आर फीलिंग गुड. पावर का मतलब ये, पेशेंस इज अ पावर. वो पावर आपको कब फील होगा? जब वो आपको अच्छा लग रहा है, कुछ फायदा दे रहा है. अगर आपको लग रहा है कि सब जा रहा है, कुछ मेरे हाथ में नहीं है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो पावर नहीं है, वो पावरलेस स्टेज है. पावरफुल स्टेज माना आपको कुछ मिल रहा है, आप सशक्त है. तो अगर ट्रैवलिंग में समय जा रहा है तो आप कैसे फील कर सकते हैं कि अच्छा समय गया? हाँ, कैसे उसका इंतजाम कैसे कर सकते हैं? जैसे मुंबई में हमारे ब्रदर सिस्टर्स कई बार ऐसे करते हैं कि ट्रैवलिंग में बहुत सारा टाइम जाता है, तो उस समय अच्छे अच्छे लेक्चर्स सुन लेते हैं, उस समय प्लान कर लेते हैं सारे दिन का, उस समय कहीं फोन कॉल्स कर लेते हैं. तो क्या किया उस समय का? सदउपयोग किया, इंतजार नहीं किया, इंतजाम किया. और देखिए, पेशेंस हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं. एक बहुत अच्छी बात हमने सुनी कि अगर समझो जो गाड़ी चला रहा है और उसके आगे जो गाड़ी चल रही है वो बहुत स्लो जा रही है और आपको जल्दी पहुंचना है, तो क्या होगा? पेशेंस रहेगा? रहेगा नहीं. पर आप ऐसे सोच सकते हैं कि आप वीआईपी हैं और आपके आगे जो गाड़ी है ना, वो आराम से आपको लेके जा रहे हैं. जैसे वीआईपी की गाड़ी है ना, आराम से लेके जाते हैं ना, बॉडीगार्ड्स जो होते हैं वो आराम से रास्ता बना के लेके जाते हैं. तो आप ऐसे फील कर सकते हैं कि आप वीआईपी हैं और वो सामने वाली गाड़ी आपके गार्ड्स हैं और वो आराम से एस्कॉर्ट कर रहे हैं आपको. तो इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग. जैसे अभी हमने एक्सरसाइज किया तो सबने, उस गीत में भी था ना, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा. और एक बहुत अच्छी बात, एक व्यक्ति का अनुभव हमने सुना कि एक बार वो गाड़ी चला रहा था और बहुत उसे घाई थी और उसके सामने जो गाड़ी थी वो बहुत आराम से जा रही थी, तो वो हॉर्न बजा रहा था. इतने में उसका ध्यान गया, सामने वाली गाड़ी पर एक स्टिकर लगा हुआ था और स्टिकर पे लिखा हुआ था, शारीरिक विकलांग है, कृपया आप धीरज धरिए. फिजिकली हैंडीकैप व्यक्ति इसमें है तो आप कृपया धीरज धरिए. तो वो उस व्यक्ति ने अपना अनुभव सुनाया कि जैसे मैंने वो स्टिकर पढ़ा तो बस मेरा सब कुछ बदल गया. उसके बाद मैंने सोचना शुरू किया कि वो व्यक्ति हैंडीकैप्ड है तो मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए, तो मैं आराम से गाड़ी चलाने लगा. और मेरे मन में आया कि क्या हर बार मुझे शांत करने के लिए और मेरे अंदर धीरज लाने के लिए मुझे ऐसे स्टिकर की जरूरत है? क्या बार बार ऐसे कुछ स्टिकर देखूंगा तो ही मैं शांत हो जाऊंगा? और फिर उसने आगे सोचा कि सचमुच अगर देखा जाए ना, अगर समझो व्यक्ति प्रॉब्लम में है और यहां माथे पे स्टिकर लगा के घूमे, ऐसा स्टिकर कि मेरी है ना शादी टूट गई, तो आपको गुस्से पे गुस्सा आएगा उससे? अगर कोई स्टिकर लगा के घूमे कि मेरा धंधा चौपट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, मैं बिल्कुल घाटे में हूं, तो आपको गुस्सा आएगा उस पे? आएगा. तो ऐसे सब स्टिकर लगा के घूमेंगे तो अच्छा रहेगा ना? तो सब एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? अगर स्टिकर लगा हुआ है कि मेरी नौकरी चली गई, ऐसे स्टिकर आप पढ़ेंगे तो आपको कैसा लगेगा? आपको उस व्यक्ति के लिए गुस्सा आएगा कि आपको रहम आएगा? रहम आएगा ना. और सचमुच अगर देखा जाए, आज सचमुच सबके जीवन में वी डोंट नो व्हाट प्रॉब्लम्स पीपल आर फेसिंग, इजंट इट? हमें पता नहीं है कि कौन क्या चुनौती से गुजर रहा है. सिर्फ एक स्टिकर नहीं लगाया है, स्टिकर लगाएंगे तो मालूम पड़ेगा, है ना? तो हम वो स्टिकर देख सकते हैं, अदृश्य स्टिकर. अदृश्य स्टिकर देख करके हम अपने आप को धीरज में रख सकते हैं। तो हमारी दादी जी भी कहती है, जानकी दादी जी कहती है कि ये तीन शब्द है ना, इसको जितना हो सके अवॉइड करो, हरी वरी एंड करी, है ना। हरी करते हैं हम, हरी हरी अप हरी अप, और वो हरी लीड्स टू वरी। कितनी बार ऐसा होता है कि आप गाड़ी फास्ट फास्ट चला के फिर आप अपने जगह पे चले गए, फिर याद करते रहे गाड़ी में चाबी तो नहीं रह गई, है ना, घर लॉक करके गए, फिर सोचते गैस बंद तो बंद किया कि नहीं किया, ऐसा सोचते हैं ना। तो जितनी बार हरी किया तो बाद में वरी जरूर करते हैं। और करी माना कंफ्यूजन, करी माना ऐसी सब्जी होती है इसमें बहुत कुछ मिला हुआ होता है, तो ऐसा कंफ्यूजन में हम आ जाते हैं। तो इसीलिए पेशेंस, पेशेंस, जब हम पेशेंट होते हैं तो हम दूसरों के लिए सोच सकते हैं, दूसरों का सुन सकते हैं, दूसरों को समझ सकते हैं। तो पेशेंस एक बहुत अच्छा वर्च्यू है, और इससे पावर आता है, द पावर टू लेट गो। अभी सुना ना, जो वाइज होते हैं वो क्या करते हैं, लेट गो। सो इट्स द पावर टू लेट गो, इट्स द पावर टू सी अदर्स, इट्स द पावर टू हेल्प अदर्स मूव ऑन। तो ये पेशेंस है। लेकिन ये पेशेंट हम कब रह सकते हैं, जब हम उपस्थित है, हम अवेलेबल है। अच्छा, आप में से कोई है जो कुछ एक एक्सरसाइज करना चाहते हैं, यहाँ पर एक एक्सरसाइज करेंगे तो कोई यहाँ पर आएंगे वॉलंटियर यहाँ ऊपर? अच्छा, आपको एक माइक देते हैं। आपका शुभ नाम?
धीरज।
धीरज गेरा, ओके, वेरी नाइस। तो अभी है ना, आपको ध्यान से सुनना है और आपको है ना जल्दी जल्दी आंसर करना है, ठीक है। आप जल्दी जल्दी आंसर करना, मैं जो जो क्वेश्चन पूछूंगी आपको जल्दी जल्दी करना है ना। सबको जल्दी जल्दी की आदत है ना, आदत है ये? आप फटाफट सोचना नहीं है, रेडी ना, सोचना नहीं है आपको, तुरंत जवाब देना है। सो रेडी?
रेडी।
अच्छा, व्हाट्स द कलर ऑफ माय साड़ी?
व्हाइट।
व्हाट्स द कलर ऑफ दिस टीपॉय?
व्हाइट।
व्हाट्स द कलर ऑफ दिस?
व्हाइट।
व्हाट्स द कलर ऑफ द पिलो?
व्हाइट।
व्हाट्स द कलर ऑफ दिस क्लोथ?
व्हाइट।
नाउ रिपीट सिल्क वर्ड 5 times। सिल्क 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 सिल्क
सिल्क सिल्क सिल्क सिल्क सिल्क।
व्हाट डज द काउ ड्रिंक?
जी,
व्हाट डज द काउ ड्रिंक? गाय क्या पीती है?
मिल्क।
गाय क्या पीती है? बहुत अच्छा, थैंक यू ब्रदर। अच्छा,
ओम शांति।
ओम शांति, थैंक यू वेरी मच, आपके वजह से सबको लेसन मिला। अच्छा, गाय क्या पीती है? गाय क्या पीती है? अभी मिल्क कहा ना, कितनों ने मिल्क कहा, आ गया ना मन में मिल्क? घास का दूध पीती है क्या? पीती है, खाती नहीं, पीती है, पानी पीती है। देखो, जितना हम बाद में अपना दिमाग लगाने लगे तो पानी आ गया, लेकिन पहले क्या आया? मिल्क। तो मिल्क तो नहीं पीती ना, वो देती है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि जब मैंने बार बार कहा, है ना, हर क्वेश्चन का आंसर वाइट था और सिल्क 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 किया, तो मन क्या हो गया, मन के अंदर वो आ गया, एजम्पशन हो गया, एसोशिएट किया मेमोरीज को, और आंसर निकला मिल्क, जबकि रियल आंसर है पानी। तो कहने का भाव क्या है, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड फुल टाइम हमारा नहीं रहता है, है ना। या तो हम कहीं पास्ट में चले जाते हैं या तो कहीं फ्यूचर में। और गाड़ी चलाते समय अगर खोए खोए रहते हैं तो क्या होगा, कुछ हो सकता है ना, दुर्घटना घट सकती है ना। तो गाड़ी चलाते समय कहाँ रहना है, टू बी इन द नाउ, प्रेजेंट, प्रेजेंस ऑफ माइंड। अच्छा, आपको पता है कि आप में से कितने हैं जो पास्ट में रहते हैं, और कितने हैं जो फ्यूचर में रहते हैं, और कितने हैं जो प्रेजेंट में रहते हैं? आपको पता करना है, अपना पता करना है, पता करना है आपका। आपको पता चले कि आपका मन ज्यादा पास्ट में रहता है कि फ्यूचर में रहता है कि प्रेजेंट में रहता है, ठीक है। तो एक टेस्ट देती हूं। अगर अच्छा आपके मन में चिंता चिंता है, डर है, आपके मन में टेंशन है, फियर है, स्ट्रेस है, है ये ज्यादा है, तो आप कहां रहते हो? फ्यूचर में क्या होगा, तर पाएंगे नहीं तर पाएंगे, कैसे होगा पता नहीं, तो मन ज्यादा कहां है, फ्यूचर में। और अगर आपके मन में अफसोस है, दुख है, पश्चाताप है, गिल्ट है, तो आप कहां रहते हो, पास्ट में। और अगर आप निश्चिंत है तो आप प्रेजेंट में है। तो पता चला सबको, अपना पता चला, आप ज्यादा किधर रहते हैं, फ्यूचर में। कोई पास्ट, सबका अपना अपना है, कोई पास्ट में कोई फ्यूचर में। कितने हैं जो निश्चिंत रहते हैं यहां पर और वहां पर भी, वहां पर भी। तो जितना हम निश्चिंत है मींस आई एम अवेलेबल, आई एम इन द प्रेजेंट। तो चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन एक्सरसाइज। अगर हम बार बार इन द नाउ आते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रहेगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है ना, कि समय पर हमें क्या करना है, वो सूझ जो बोलते हैं, तो वो सूझ आती है बार बार प्रेजेंट में रहने से। ठीक है, तो चलिए एक मेडिटेशन एक्सरसाइज ब्रेक करते हैं। तो सब थोड़ा रिलैक्स होंगे, रिलैक्स होके बैठेंगे और अभी अपने श्वास पर ध्यान दीजिए। आप फील करो कैसे आप श्वास लेते हो और कैसे आपका श्वास आप छोड़ते हो। श्वास ले रहे हो और श्वास छोड़ रहे हो। और महसूस करिए वातावरण में जो अलग अलग आवाज है उसको सुनने की कोशिश करिए। और इस वर्तमान में, इस वर्तमान का आनंद लीजिए। आप इस विशाल हॉल में बैठे हैं, आपके सामने एक दिव्य प्रकाश तस्वीर में है। महसूस करिए कि इस दिव्य प्रकाश से आपको बहुत एनर्जी मिल रही है, बहुत प्रकाश ही प्रकाश, बहुत क्लैरिटी मिल रही है। अब फिर से अपने श्वास पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और बहुत आराम से मस्तक के बीच में एक दिव्य प्रकाश देखेंगे। महसूस करेंगे कि यही वो दिव्य प्रकाश है जो इस शरीर में जान भर रहा है। अब फिर से अपनी सराउंडिंग्स में आ जाएंगे। ओम शांति। तो पता चला कैसे प्रैक्टिस करना है। बार बार प्रेजेंट में आना, प्रेजेंट को अच्छी तरह महसूस करना। ये जितनी बार हम करेंगे तो हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रहेगा, अवेलेबल रहेंगे। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि हम फिजिकली अवेलेबल हैं, आप सबका अटेंडेंस लग गया है बार, लेकिन कितनी बार घूम के आते हैं, मन से घूम के आते हैं कि नहीं, तो मेंटली अनअवेलेबल, मेंटली नॉट अवेलेबल कितनी बार हो जाते हैं, तो इस अभ्यास से हम मेंटली अवेलेबल रहेंगे और गाड़ी भी अच्छी तरह चला सकते हैं, सेफ रख सकते हैं अपने आप को और सभी को. तो ये सेकंड पावर अवेलेबल, यानी द पावर टू पैक अप. द पावर टू पैक अप क्या? ऑल वेस्ट थॉट्स, ऑल थॉट्स ऑफ पास्ट पैक अप करके मुझे रहना है वर्तमान में. सो दिस इज द पावर टू पैक अप. पहला था पावर टू लेट गो, पावर टू विथड्रॉ, और ये है पावर टू पैक अप. अच्छा, फिर थर्ड पावर एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस तो ये हमें, जैसे कहा, प्रकृति से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो एक नदी से हम सीख सकते हैं कि नदी पहाड़ियों से निकलती है और क्या उसका रास्ता तय होता है? क्या उसका रास्ता फिक्स्ड होता है? आप क्या उसका रास्ता स्मूथ होता है, है ना? क्या उसका रास्ता बहुत ही क्लियर डिफाइंड होता है? नहीं, है ना? कितने सारी चुनौतियां उसको फेस करना पड़ता है एक नदी को. मैन मेड चैलेंजेस भी हैं और नेचुरल चैलेंजेस भी है, है ना? पहाड़ी, चट्टान, फिर मैन मेड ब्रिजेस, डैम्स, कितना कुछ उसको फेस करना पड़ता है. तो ऑब्जर्व करिए, नदी क्या करती है? क्या वो लड़ती है अगर ब्रिज आ गया, अगर डैम आ गया, लड़ती है उधर कि पहाड़ी आ गया मुझे इधर से ही जाना है, ऐसे लड़ती है? क्या करती है? वो पीछे मुड़ती है, रुकती है, न लड़ती है, न रुकती है, न पीछे मुड़ती है. क्या करती है? साइड में से अपना रास्ता खुद बना लेती है और आगे बढ़ जाती है, और तब तक बढ़ती है जब तक सागर में ना मिल जाती है ना? माना फाइनल उसका डेस्टिनेशन है सागर में मिलना. तो हमें नदी से सीखना है. हम सब भी घर से निकलते प्लान बना के, है ना? प्लान बना के निकलते हैं. 365 दिन है साल के, 365 दिन में कितने दिन आपके प्लान के हिसाब से सब कुछ होता है? कितने दिन ऐसे हैं? कितने दिन है जो आप जैसा प्लान किए, आपको जैसा पसंद है वैसा ही सारा दिन बीता, ऐसे कितने दिन होते हैं? हम बच्चों को जब पूछते हैं ना, वो कहते बर्थडे के दिन, है ना? बर्थडे के दिन सब हमारे हिसाब से करते हैं, पर बड़े कहते हैं बर्थडे के दिन भी कई बार आधा दिन बीत जाता है, लास्ट में किसी को याद आता है तो हमारे हिसाब से होता है. तो हम देखते हैं हमारे हिसाब से दिन नहीं होते हैं, हमने प्लान कुछ किया होता है और होता कुछ और है. तो हमें एक्सेप्ट करना है इस रियलिटी को, प्लान करना है. लेकिन यहां परमात्मा हमें सिखाते हैं कि प्लान करने के बाद जब आप कार्यक्षेत्र पर जाते हैं तो प्लेन हो जाओ. प्लान करो और फिर प्लेन हो जाओ, निश्चिंत होके फिर कार्य करो, तो फिर हम बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर सकते हैं हर बात को. तो रोड पे जब हम चलाते हैं, चलते हैं, तो हमें एक्सेप्ट करना है कि ये रोड सब के लिए है, सभी के लिए है, सभी यात्रियों के लिए, सभी वाहनों के लिए, बड़े छोटे सब, रैश ड्राइवर्स, पेशेंट ड्राइवर्स, सब के लिए है. तो सब अपने हिसाब से चलेंगे. तो ये हमें एक्सेप्ट करना है कि ये सब कुछ होना ही है, ये सब ऐसे वैरायटी रहने ही वाले हैं. तो हमें एक्सेप्ट करना है. एक्सेप्टेंस का मतलब है द पावर टू टॉलरेट. एक्सेप्टेंस का मतलब है कि हाई डिमांडिंग सिचुएशंस में भी आप जो है टॉलरेट कर सकते हैं. आपको पता है सोना जो है वो बहुत हाई टेम्परेचर में मेल्ट होता है, लेकिन उसमें भी उसके जो इम्प्योरिटीज है वो मेल्ट हो जाते हैं और वो फ्लेक्सिबल बन जाता है. तो एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट मोर एक्सपेक्ट लेस. और हम क्या करते हैं? उल्टा करते हैं ना, एक्सपेक्ट मोर एंड एक्सेप्ट लेस. तो हमें ये एक्सेप्टेंस में आना है कि वैरायटी है, सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, सब अपनी अपनी स्पेशलिटीज के साथ हैं, तो हमें एक्सेप्ट करना है. तो जब हम एक्सेप्टेंस लेवल हमारा हाई है तो हम टॉलरेट कर सकते हैं. और एक्सेप्ट करने के लिए हमें फ्लेक्सिबल होना है। एक बहुत बड़ा तूफान आ गया था और तूफान में सारी रात सब पूरा बगीचा जो है वो पूरा उखड़ गया और उसमें देखा गया एक 40-50 साल वाला बहुत पुराना बड़ा सा झाड़ पूरा जड़ सहित उखड़ गया। लेकिन उसके बाजू में जो घास का तिनका था वो बच गया, वो तूफान में बच गया। कैसे बच गया? क्योंकि उसके पास वो एबिलिटी था झुकने का, फ्लेक्सिबिलिटी का। क्योंकि वो झुक गया और बच गया। और जितना वो झाड़ बड़ा था वो रिजिड था, फर्म था, और इसीलिए वो उखड़ गया। तो हमें भी लाइफ में झुकना है। जैसे अभी कहा ना, हार मानी तो हारमनी। तो ऐसे अगर हम झुकते हैं, औरों के लिए भी रास्ता देते हैं, तो हम कई बार सिचुएशंस को अच्छी तरह से उसको उसमें हारमनी ला सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल होना, कहते ना झुकना जिंदगी की पहचान है, झुकना जिंदगी की पहचान है, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान है, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान है। तो हमें अपने लाइफ में फ्लेक्सिबल रहना है, लचीला बनना है। और आज हेल्थ वाइज भी कहते हैं कि हेल्दी वो है जो फ्लेक्सिबल है। भले आप मोटे हैं पतले हैं, लेकिन आप फ्लेक्सिबल हैं तो आप हेल्दी है, लचीले हैं तो आप हेल्दी है। जैसे स्टिफनेस आता है तो आप प्रॉब्लम आता है। तो इसीलिए हमें लचीला रहना है, फ्लेक्सिबल। और फ्लेक्सिबल हम तब रह सकते हैं जब हम पॉजिटिव है। फ्लेक्सिबल रहने के लिए हमारे पास पॉजिटिविटी होना चाहिए। अब देखिए पॉजिटिव थॉट क्या है। उदाहरण के लिए यहां पर एक पेन है, आप मुझे पता है, आप इसको डिस्क्राइब करिए, इस पेन को डिस्क्राइब करिए, इस पेन को डिस्क्राइब करिए, क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ जी, ये प्लास्टिक पेन है, गुड। और हाँ जी, ये बहुत अच्छा पेन है, अच्छा। हाँ, जोर से बोलिए, क्या है? डार्क कलर का है, दिखने में अच्छा है। दो टू कलर्स है इसमें, व्हाइट है ग्रे है। ये पेन लिखने के लिए इसका उपयोग होता है, इट्स यूज फॉर राइटिंग। हाँ जी, ये पेन ग्रे कलर का पेन है, इट इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, ऐसा। अच्छा, तो अभी आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो आपने डिफरेंट थॉट्स बताए, तो इसमें से ऑर्डिनरी थॉट्स कौन से थे? ये पेन है, ग्रे कलर का है ना, ये सब ऑर्डिनरी है। पॉजिटिव थॉट्स क्या है? ये लिखने के लिए यूज हो रहा है, सुंदर है, ये पॉजिटिव थॉट्स है। और एलिवेटेड थॉट्स पता है? एलिवेटेड माना ऊंचे विचार। एक होता है अच्छा विचार और एक होता है ऊंचा विचार। तो अच्छा और ऊंचा आप बता सकते हैं। अच्छा विचार है कि ये पेन लिखने में काम आ रहा है, इट इज यूज फॉर राइटिंग। और एलिवेटेड क्या कहेंगे? एलिवेटेड, अभी इसको ऊंचा कैसे बनाएंगे? हाँ, मैं ऐसा लिखूं जिससे लोगों को प्रोत्साहन मिले, इसमें मैं ऐसा लिखूं जो लोगों को प्रेरणा मिले, तो ये पेन, ये थॉट क्या हो गया? ऊंचा विचार हो गया। समझ में आया ना? समझ में आया डिफरेंस कि एक होता है ऑर्डिनरी थिंकिंग, एक होता है पॉजिटिव थिंकिंग, और एक होता है एलिवेटेड थिंकिंग। तो साइंस भी, मेडिकल साइंस भी आज हमें कहता है कि जब हम ऊंचा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं जो हेल्थ प्रमोटिंग हॉर्मोन्स होते हैं, जो हमारे शरीर की तंदुरुस्ती बनाने में हेल्प करते हैं, हमारे मन के विल पावर को बनाने में हेल्प करते हैं। वो कौन से थॉट से होता है? पॉजिटिव, एलिवेटेड से और अच्छा, ठीक है। तो पॉजिटिविटी माना, इट्स द साइंस ऑफ क्लियर थिंकिंग। जब हमें सब कुछ पता है, इसलिए हमारे विद्यालय में एक बहुत अच्छा स्लोगन है कि जब हम राज को जान गए तो हम नाराज नहीं हो सकते हैं। जब हम सारे राज को जान जाते हैं तो नाराज नहीं हो सकते। तो इट इज द साइंस ऑफ क्लियर थिंकिंग, यानी सब क्लियर हो गया, राज पता चल गया, तो नाराज हो सकते हैं? नहीं हो सकते. तो इट इज क्लियर थिंकिंग. पॉजिटिविटी मीन्स सब कुछ क्लियर है, नो कंफ्यूजन. और पॉजिटिविटी माना, पॉजिटिविटी का मतलब है कि जैसे एक तालाब है, अगर उसमें पानी बहुत स्थिर है, क्लियर है, क्लियर पानी है, गंदा नहीं है, क्लियर है, तो आप उसमें देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको अपना प्रतिबिंब, अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, और उस पानी में भी नीचे जो गहराई में है वो भी दिखाई देगा. तो कितना कुछ दिखाई दिया. और वही अगर गंदा था तो कुछ भी नहीं, ना अपना चेहरा ना उसकी गहराई. तो जब क्लियर है तो कितना कुछ दिखाई देता है. सो इसीलिए कहते हैं काम माइंड कैन सी बेटर. अगर मेरा मन भी ऐसे क्लियर तालाब की तरह है, काम है, तो मैं अच्छा देख सकती हूँ, अच्छा देख सकता हूँ, अच्छा समझ सकता हूँ, और अच्छा डिसर्न परख सकता हूँ, अच्छा निर्णय कर सकता हूँ. अ काम माइंड कैन सी बेटर, कैन अंडरस्टैंड बेटर, कैन डिसाइड बेटर, कैन डिसर्न बेटर. तो पॉजिटिविटी से परख शक्ति और निर्णय शक्ति, ये दोनों शक्तियां भी आ जाती हैं. तो अभी हम कैसे पॉजिटिव रहे, हमें ये थॉट्स के साइंस को समझना है. हमारे पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है, अभी आप यहां बैठे हैं, आप किसको कहेंगे कि सबसे वैल्यूबल है, ये मेरा सबसे कीमती रिसोर्स है, क्या है? आप खुद हैं. अभी हमने देखा ना, व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, वैल्यूबल है, उसकी रक्षा करनी है. तो व्यक्ति में भी इंपॉर्टेंट वैल्यूबल क्या है? आपके जेब में है, देखो जेब में है पैसा, पैसा वैल्यूबल है ना, है पैसा वैल्यूबल है कि नहीं है? है ना. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास? पैसा वैल्यूबल है. अभी हमने देखा कोची में जो कुछ भी हुआ, तो उस समय पैसा काम आता है. पैसा है बैंक में बहुत, जेब में भी है, लेकिन कुछ काम आया तो उस समय क्या काम आता है? ज्ञान. तो सबसे वैल्यूबल रिसोर्स है आपके विचार, थॉट एनर्जी, थॉट्स, वो एनर्जी है आपका. तो अगर वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है, वो एनर्जी राइट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो राइट चीजें, अच्छी चीजें, अच्छी बातें आपके पास आएंगी. इसीलिए कहा वी ग्रेविटेट इन द डायरेक्शन ऑफ आर डोमिनेंट थॉट्स. वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, एंड वेयर एनर्जी फ्लोज थिंग्स ग्रो. तो अगर मेरा ध्यान सेफ्टी पे है, मेरा ध्यान पॉजिटिविटी पे है, तो मेरी एनर्जी कहां जा रही है? पॉजिटिविटी की तरफ. तो क्या बढ़ेगा? पॉजिटिविटी. मेरा ध्यान सेफ्टी की तरफ है तो क्या एनर्जी कहां जा रहा है? सेफ्टी की तरफ. क्या बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? सेफ्टी, हम सेफ रहेंगे. तो आपके पास इंपॉर्टेंट वैल्यूबल रिसोर्स है ना, आपके थॉट्स. तो थॉट्स के बारे में हम जानकारी रखते हैं. अभी आप सुबह से लेकर के अब तक कितना पैसा खर्चा हुआ, वो हम जानकारी रखते हैं कि नहीं रखते हैं ना, थॉट्स के बारे में कितना खर्चा हुआ, कितना इन्वेस्ट किया, हम जानकारी नहीं रखते हैं, परंतु ये इंपॉर्टेंट रिसोर्स है. अच्छा, एक एक्सरसाइज करते हैं. रेडी? मैं जो बोलूंगी फटाफट करना. रेडी? डोंट थिंक ऑफ अ बिग पिंक एलिफेंट विद पर्पल स्पॉट्स एंड बिग ईयर्स. आप एक गुलाबी रंग के हाथी के बारे में मत सोचना, और उसके है ना नीले नीले दब्बे हैं और बड़े बड़े कान हैं, मत सोचना. नहीं सोचा ना? नहीं सोचा ना? ना सोचा कि नहीं? मैंने आपको बोला नहीं सोचना और आपने क्या किया? वही सोचा है ना, वही सोचा ना. क्यों सोचा? हमने आपको इंस्ट्रक्शन दिया कि मत सोचना. क्यों सोचा? क्या हुआ कि जैसे ही मैंने कहा गुलाबी हाथी, तो आपके मन में क्या हो गया, पिक्चर क्रिएट हुआ। नहीं सोचना उसका पिक्चर क्रिएट हुआ, नहीं हुआ। तो हमारा जो मन है वो पिक्चर्स में सोचता है, मन चित्रों के रूप में सोचता है, राइट। देखो एरोप्लेन क्या आया आपके माइंड में, ए ई आर ओ पी एल ए एन ई, ऐसा आया कि चित्र आ गया। बस, कार, ड्राइवर, शिप, मून, सन, लोटस, सनफ्लावर, टेबल, चेयर, पेन, लैपटॉप, गुलदस्ता, सब क्या दिख रहा है आपको, इमेजेस है ना, पिक्चर्स। कुछ भी आपको वर्ड्स दिखाई दिया, शब्द दिखाई दिए, नहीं, क्या दिखाई दिए, चित्र। तो हमारा मन जो है ना वो चित्रों के रूप में सोचता है, और जैसा चित्र वैसा चरित्र बनता है, जैसा चित्र वैसा चरित्र। तो अभी अगर आपको पॉजिटिव पर्सनालिटी बनानी है, पॉजिटिव चरित्र बनाना है, सेफ पर्सनालिटी, सेफ रहना है, तो चित्र कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, सेफ। आप सेफ हैं, सब सेफ है, सब पॉजिटिव है, वो चित्र यहां रहा तो आप भी कैसे रहेंगे। अगर आप ये सोचते एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, अरे मेरे गाड़ी को स्क्रैच नहीं लगना चाहिए, अरे मुझे लेट नहीं पहुंचना चाहिए, तो क्या पिक्चर क्रिएट हुआ, क्या पिक्चर क्रिएट हुआ, मुझे लेट नहीं होना चाहिए, तो आप लेट हो रहे, वो पिक्चर क्रिएट होता है। एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, एक्सीडेंट का पिक्चर होता है। स्क्रैच नहीं लगना चाहिए गाड़ी को, तो स्क्रैच का पिक्चर क्रिएट हुआ। और जैसा चित्र वैसा ही चरित्र, वैसा ही रियल में, रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब समझ में आया कितना ध्यान से सोचना है, तो जो चाहिए वो क्रिएट करो। हमें क्या देखना है अपने आप को, सेफ। तो क्या पिक्चर क्रिएट करेंगे, आई एम सेफ। हमें अपनी फैमिली को सेफ देखना है तो क्या देखेंगे, माय फैमिली इज सेफ। आप गाड़ी सेफ सुरक्षित रीति से चलाते तो कैसे सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, आपको गाड़ी सुरक्षित रूप से चलानी है तो कैसे सोचेंगे, कैसा सोचेंगे, मैं सुरक्षित रूप से गाड़ी चला रहा हूं। तो देखिए कैसे जब आप जर्नी स्टार्ट करते हो तो आप कैसे विचार देकर स्टार्ट करना। जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो चेक करते हैं ना, पेट्रोल है, सब बराबर है ना, स्टीयरिंग बराबर है, एक्सीलेटर ब्रेक बराबर है, चेक करते हैं ना। तो थॉट्स अभी चेक करेंगे उसके साथ, थॉट्स भी चेक करेंगे, वो चेक करेंगे उसके साथ साथ थॉट्स को भी हम चेक करेंगे, ठीक करेंगे। तो हम ऐसे सोचेंगे, आई राइड अ सेफ व्हीकल, मैं एक सुरक्षित वाहन को चला रहा हूं। इट गिव्स मी अ स्मूथ ब्रेकडाउन फ्री जर्नी, मेरी यात्रा बहुत ही सुखद, बहुत ही आरामदायक है, स्क्रैच फ्री क्लीन व्हीकल है, और ये सही मालिक के साथ है, मैं इसका सही मालिक हूं। ठीक है ना, एक रिपीट करेंगे, रिपीट करिए, आई राइड अ सेफ व्हीकल, इट गिव्स मी अ स्मूथ ब्रेकडाउन फ्री जर्नी, इट्स अ स्क्रैच फ्री क्लीन व्हीकल, इट स्टेज विद द राइट ओनर। और हम अपने आप के लिए भी अच्छा सोचेंगे, गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो अपने आप के लिए भी सेफ पॉजिटिव विचार देंगे कि मैं सुरक्षित हूं, मैं जागृत हूं, मैं जिम्मेदार हूं, और मेरी सफर बहुत ही आरामदायक है। चलो इसको भी रिपीट करेंगे, मैं सुरक्षित हूं, जोर से बोलिए, मैं अलर्ट जागृत हूं, मैं जिम्मेदार हूं, और मैं आरामदायक गाड़ी चला रहा हूं, और मैं भगवान की छत्र छाया में सुरक्षित हूं। कैसा लग रहा है ऐसे सोच के, अच्छा लगता है ना। तो ऐसे अच्छा सोच के, अच्छा फील करके अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। ऑन रोड आई एम इन द कंपनी ऑफ माई वर्ल्ड फैमिली, माई फ्रेंड्स। जब मैं यात्रा पर हूं तो मेरे साथ विश्व परिवार है, मेरे दोस्त है, मेरे सहयोगी साथी है, ऐसा सोचो तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? तो सारी सोच के ऊपर ही है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, वैसा महसूस होगा। तो अपनी गाड़ी को भी अच्छा सा नाम दीजिए, चेतक, शेरू, है ना, और उसको बोलिए चलो, है ना, ये गाड़ी मेरा ध्यान रखेगा। सोच सकते हैं ना? गाड़ी को भी थपथपाना कि बहुत अच्छा गाड़ी है, ये मेरा ध्यान रखेगा। सोच सकते हैं ना? तो गाड़ी के लिए भी हम कहेंगे कि हे भगवान, प्यारे पिता, थैंक्स, आपका धन्यवाद है, आपने मुझे इतना सुरक्षित, इतना मजबूत वाहन दिया, और इस यात्रा के लिए भी धन्यवाद है। जैसे यात्रा पूरी हो जाए, हमने पहले देखा यात्रा शुरू करने के समय कैसे सोचना है, अभी यात्रा पूरी हो जाएगी तब कैसे सोचेंगे? प्यारे पिता, प्यारे भगवान, आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बहुत मजबूत गाड़ी दिया, आपने सेफ गाड़ी दिया, और मेरी यात्रा भी बहुत सुखद रही, और ये सही मालिक के साथ रहेगा। अच्छा लगता है? तो लास्ट में धन्यवाद करेंगे रोज, अपने गाड़ी को भी थपथपाएंगे, करेंगे ना, जैसे अपने पीठ को थपथपाएंगे ऐसे गाड़ी को भी करना है ना, वो आपका चेतक है। हाँ हाँ जी, पड़ोसी हंसेंगे तो आप उनको खुशी दे रहे हैं ना, अच्छी बात है ना, है ना। आज देखो कोई कहा ना कि कोई मुस्कुराता ही नहीं है, तो कोई मुस्कुराएगा तो अच्छा है। हाँ, मन ही मन में करो, अगर आपको बाहर से नहीं करना है तो मन ही मन में करो। अच्छा, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी माना एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन। आज के युग में हम सब स्पीड चाहते हैं ना, फास्ट, हम चाहते हैं कि जल्दी काम हो जाए, है ना, चाहते जल्दी पहुंच जाए, यही चाहते हैं ना। देखो, सूरज के नीचे कागज रखते हैं, कितने साल में जलता है वो, कितने साल में जलता है? सूरज के नीचे आप एक कागज रखो, कितना साल लगेगा जलने में? जलेगा नहीं, सिर्फ कलर उड़ जाएगा पर जलेगा नहीं। और वही कागज आप सूरज की किरणों को एकाग्र करो तो क्या होगा? तो सेकंड्स में वो जल के राख हो जाएगा। तो जो काम सालों में नहीं हुआ वो सेकंड में हो गया। कब हुआ? जब फोकस किया, कॉन्सेंट्रेट किया। तो ऐसे ही जितना मन फोकस्ड है, स्टेबल है, उसका स्पीड फास्ट है। अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो जितना हम स्टेबल रहेंगे, जितना हम फोकस रहेंगे, तो आप देखना कम टाइम में आप ज्यादा काम कर सकते हैं, आप जल्दी पहुंच सकते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी बहुत बड़ी एनर्जी है ना। जैसे सूरज की किरणें फोकस किया तो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, तब वो कागज को जला के राख कर सकता है। तो ऐसे ही जब हम फोकस्ड माइंड रहता है, वॉन्डर नहीं कर रहा है, इधर उधर नहीं जा रहा है, फोकस्ड है, स्टेबल है, तो आप देखना आप जल्दी पहुंच सकते हैं। करके देखना, एक्सपेरिमेंट करिए। तो स्टेबिलिटी मीन्स द पावर ऑफ बीइंग अनइन्फ्लुएंस्ड बाय नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस। माना वेस्टेज खत्म, नेगेटिव खत्म, एकदम फोकस्ड। तो जहां पर सपोर्ट है, जहां ट्रस्ट है, वहां स्टेबिलिटी है। फिर है, यस, पार्डन, वेस्टेज थॉट। अच्छा, वेस्टेज थॉट ये है, समझो आप यहां पर है, अभी आप यहां बैठे हैं और आपको भूख लगी है, तो आपको विचार आता है आज खाने में क्या बना होगा, आज अच्छा बना होगा, मुझे जो पसंद है वो बना होगा, ये बना अच्छा, शाम का कौन सा सेशन होगा। तो ये अभी वो थॉट्स अभी करने की जरूरत है, अभी करने की जरूरत नहीं है, है ना, फिर भी हम उसके बारे में सोचते हैं तो वो हो गया वेस्ट थॉट। ठीक है, वेस्ट थॉट। अगर ये पेन है और पेन के बारे में सोचते, पता नहीं किसका है, कौन भूल गया, पता नहीं कहां से मिला इस बहन जी को, ऐसे आपने सोचा और उससे कुछ फायदा आपको नहीं हो रहा है, वो विचार जिसको करने से आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फायदा नहीं हो रहा है, उसको बोलेंगे वेस्ट थॉट। तो फोकस मींस वेस्ट कट, नेगेटिव कट। अच्छा, उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत सुंदर मीनिंग है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स प्लेइंग वन्स ओन रोल इफेक्टिवली एंड मेकिंग इफेक्टिव सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन। हम सब जिम्मेदार है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि ये मिनिस्टर लोग हैं ना, ये देखो इनको ऐसा करना चाहिए, अरे बच्चों को है ना ऐसे करना चाहिए, बच्चे आजकल के सुनते नहीं, उनको सुधरना चाहिए, उनको जरूर यहाँ लेके आना चाहिए, अरे हमारी बीवी को जरूर अगली बार कॉन्फ्रेंस में उनको जरूर भेजेंगे, या बहनें सोचेंगे हमारे पति को जरूर भेजेंगे। यानी हम हमेशा क्या करते हैं, दूसरों के रोल का चिंतन ज्यादा करते हैं। कभी ये बैठ के सोचते हैं कि मुझे जो रोल भगवान ने दिया है वो मैं पूर्ण रूप से निभा रहा हूं, वो मैं पूर्ण रूप से निभा रही हूं, चाहे वो फैमिली मेंबर के रूप से, चाहे वो आपका गाड़ी चालक के रूप से, या चाहे आपके प्रोफेशन के रूप से। लेकिन जो रोल आपको मिला है, क्या वो रोल आप बेस्ट प्ले कर रहे हो, तो वो हमें पूछना है। और वो है जवाबदारी लेना कि मेरा रोल मैं जवाबदारी से निभाऊं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली। आप ब्रेक करो रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड को, तो आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जनरली क्या होता है, जब भी हमारे साथ कोई परिस्थिति आती है तो हम रिएक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब ये परिस्थिति आ गई, ट्रैफिक जाम, आप फंस गए, तो रिएक्शन में थॉट स्टार्ट होते हैं ना। क्या थॉट स्टार्ट होते हैं कि अरे अभी हमको लेट हो जाएगा, अभी हमको हमारे बॉस कंप्लेन करेंगे, ऐसा थॉट्स आते हैं ना। ये थॉट्स आते हैं, जो थॉट्स आते हैं, परिस्थिति है ट्रैफिक जाम, पर थॉट्स जो आते हैं तो उसको बोलेंगे रिएक्टिव थॉट्स। तो क्या हम चूज कर सकते हैं अपने थॉट्स को, हम अपने विचारों को चूज कर सकते हैं? अभी आप मुझे बताइए कि ट्रैफिक जाम है तो आप कैसे अच्छा सोचेंगे। देखिए, अभी आप एक ट्रैफिक जाम है और उसमें अभी आपको ऐसा सोचना है जिससे आपको अच्छा फील हो, ऐसा सोच आपको चुनना है जिससे आपको फीलिंग अच्छा हो, तो क्या सोचेंगे? हाँ जी, समय से पहुंच जाएंगे, बहुत ट्रैफिक जाम है तो जो होगा अच्छा होगा, समय से पहुंच ही जाएंगे। अच्छा, और थोड़ा ईश्वर मेरे लिए अच्छा ही सोच रहा है, प्रैक्टिकल बोलना। जब भी हम प्रैक्टिकल में ट्रैफिक जाम में फंस गए तो अभी हम क्या सोचेंगे? अच्छा, हमको वो सोचना है जिससे हमको अच्छा लगे। हाँ, हो सकता है इसी में भलाई, बिल्कुल। हाँ, ये भी अच्छा है, राइट। हाँ जी, एक टाइम जबकि ले लेते हैं। अच्छा, ट्रैफिक जाम में, अच्छा, अच्छी बात है। अच्छा, अभी इम्पोर्टेंट मीटिंग है और आपको वहां पर पहुंचना इम्पोर्टेंट था और अब आप ट्रैफिक जाम में है, तो आपकी गाड़ी तो वहीं है, आप भी वहीं है, लेकिन मन वो भाग रहा है ना कि कैसे ये ट्रैफिक क्लियर हो और हम पहुंचे। तो ऐसे टाइम पे हमें खास अपने मन की एनर्जी को अच्छे जगह पे लगाना है। तो क्या कर सकते हैं, ऑप्शन क्या है? देखो, हम ये सोच सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं उपाय, तो हो सकता है मैं लेट हो जाऊं तो आप फोन करके इन्फॉर्म करें, सच बता दें कि हम लेट है, ट्रैफिक जाम में अटके हैं, तो आप शुरू कर दीजिए या किसी और को हैंडओवर कर दीजिए, तो आप निश्चिंत रह सकते हैं। ये भी एक तरीका है, आप निश्चिंत रियल में रह सकते हैं क्योंकि आपने हैंडओवर कर दिया। तो हमको अल्टरनेटिव थॉट ढूंढना है, चूज करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली, नॉट रिएक्ट। रिएक्टिव थॉट से अभी क्या होगा, देरी हो गई, अभी डांट पड़ेगी, अभी मीटिंग अच्छा नहीं होगा, ये होगा वो होगा, वो रिएक्शन है। और रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली माना जो थॉट से उसमें से एक चुन लेना जिससे आप निश्चिंत रह सकते हैं, जिससे आपको अच्छा फील हो सकता है और काम भी हो सकता है। उसको बोलते हैं रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अगर समझो बॉस ने हमें छुट्टी नहीं दी और आपको छुट्टी पे जाना था, तो मन में क्या विचार आएगा, बॉस को मेरी फिक्र ही नहीं है, कोई मेरे को समझता ही नहीं है, अभी मैं यहाँ नौकरी छोड़ दूंगा, है ना, मैं दूसरी जगह जाऊंगा तो उसको पता चलेगा, ऐसा आता है ना विचार आता है ना। अब अच्छा कैसे सोचेंगे, क्योंकि वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज एंड थिंग्स ग्रो, तो अच्छा कैसे सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, जरूरी काम है वो मैं ही कर सकता हूं इसीलिए मुझे, हाँ मेरी इंपॉर्टेंस है इसीलिए मुझे रोक दिया गया, बहुत अच्छा। हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, अपना मन जो है ना कन्विंस हो जाना चाहिए, आप ऐसा थॉट दो जो चुप बैठ जाए, वो खुश हो जाए, कन्विंस हो जाए, तब वो अच्छा फील करे, तो ऐसा उसको कन्विंस करना है। तो आप बोल सकते हैं मे बी देयर इज समथिंग इम्पोर्टेंट एट वर्क, लेट मी ट्राई एंड डिस्कस इट, है ना। और जैसे हम बहुत थके हैं और आपको ऐसे में गाड़ी चलानी है, तो आपके मन में एक आता है मजबूरी की फीलिंग कि क्या करें, चलाना ही है, मेरा जॉब है, अच्छा क्या सोच सकते हैं, अच्छा लेट मी टेक अ ब्रेक टूडे, लेट मी टॉक टूडे, मैं अपने बॉस को या अपने जो बड़े हैं उनको कहूं कि आज मुझे ब्रेक चाहिए, तो ट्राई करो टॉक करके, हमको मिल जाए छुट्टी, ये भी एक ऑप्शन है। तो आउट ऑफ मेनी ऑप्शंस जो आपका मन कन्विंस हो जाए, उसको अच्छा फील हो, तो वो आपको सोचना है, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे आपका मन खुश हो जाए, शांत हो जाए और काम भी हो जाए, है ना, विन विन सिचुएशन। अच्छा नेक्स्ट है, सो सिचुएशन डज नॉट क्रिएट माय फीलिंग्स, माय थॉट्स क्रिएट माय फीलिंग्स। कोऑपरेशन, देखिए एक फूल बगीचे में जब खिलता है तो वो देखता नहीं है कि बाजू वाला फूल खिल रहा है कि नहीं, देखता है बाजू वाला फूल अच्छा खिला है नहीं खिला है, तो मैं उससे ज्यादा खिलूं कम खिलूं, नहीं, वो बस अपने हिसाब से खिलता है, किसी को नहीं देखता है। और हम जब चलाते हैं तो हम कंपटीशन में ज्यादा आते हैं कि इसको क्या मिला, कितना मिला, कैसे मिला, हमको क्यों नहीं मिला, हमको भी मिलना चाहिए, तो हम कंपटीशन करते हैं। बट कंपटीशन जैसे गाड़ी है ना, विदेश में स्पेशली ऐसे होता है ना, हर एक गाड़ी अपनी लेन में जाती है, अपने लेन में, तो कंपटीशन हमें करना है तो किसी के साथ नहीं, करना है तो खुद के साथ, कल जो हम थे आज उससे और बढ़िया होना चाहिए, अपने साथ कम्पीट करना है, किसी के साथ नहीं, बाकी सबके साथ क्या करना है, कोऑपरेट। तो ये जो 8 शक्तियां थी, 8 पावर्स, तो एक बार रिपीट करेंगे, तो ये 8 पावर्स अगर हमारे में है तो हम विघ्नों को विनाश कर सकते हैं, श्री गणेश बन सकते हैं, विघ्न विनाशक बन सकते हैं। तो ये 8 पावर्स कौन से हैं, फर्स्ट है पेशेंस, यानी द पावर टू लेट गो, द पावर टू विथड्रॉ, ये इसको कहते हैं विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। तो दूसरा पावर था अवेलेबल, अवेलेबल रहना माना द पावर टू पैकअप, समेटने की शक्ति, अपने विचारों को समेटने की शक्ति। और तीसरा था एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस, द पावर ऑफ टॉलरेंस, सहन करने की शक्ति। ये सब शक्तियां आपको पावरफुल बनाएंगे, ये शक्तिशाली बनाएंगे, आपको अच्छे फीलिंग्स देंगे। फोर्थ है फ्लेक्सिबिलिटी, द पावर टू एडजस्ट, सहयोग देने की, यूं कहेंगे समाने की शक्ति, समाने की शक्ति, एडजस्टमेंट की शक्ति। फिर फिफ्थ है पॉजिटिविटी, यानी द पावर टू डिसर्न, क्लियर थिंकिंग, परखने की शक्ति, परखने की शक्ति। फिर है स्टेबिलिटी, एकाग्रता, तो द पावर टू जज, द पावर टू निर्णय करने की शक्ति, द पावर टू जज। और सातवां है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी द पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति। और आठवां है कोऑपरेशन, सहयोग की शक्ति। सहयोग लेने की और देने की शक्ति. तो ये आठ शक्तियां अगर हमारे जीवन में है तो फिर हम विघ्नों को विनाश कर सकते हैं, सेफ रह सकते हैं, औरों को भी सेफ रख सकते हैं. ठीक है ना. सो एवरीबॉडी हैप्पी जर्नी इन योर लाइफ. ओके थैंक यू वेरी मच. तो एक दो मिनट हम फिर से साइलेंस में बैठेंगे और सुंदर अच्छे विचारों को रिपीट करेंगे अपने मन में और परमात्मा को धन्यवाद करेंगे. ओम शांति. बहुत आराम से रिलैक्स होकर अपने मस्तक के बीच में दिव्य प्रकाश को देखेंगे, वर्तमान में आएंगे. फिर से अपने श्वासों को महसूस करिए, कैसे आप श्वास लेते हो, कैसे श्वास छोड़ते हो. अब आप श्वास लेते समय ये विचार भी कीजिए कि आपके अंदर पॉजिटिविटी, आपके अंदर पावर्स अंदर भर रहे हैं. और जैसे ही श्वास छोड़ते हो तो फील करिए कि जितना भी कुछ नेगेटिविटी अंश मात्र में भी या वंश मात्र में भी नेगेटिविटी है, वो सब आप आज उसको बाहर रिलीज कर रहे हो, उसको टाटा बाय बाय कर रहे हो. और जैसे ही श्वास लेते हो और पॉजिटिविटी और पावर अंदर आ रहा है. और महसूस करिए कि ऊपर से भी परमात्मा जो दिव्य प्रकाश है, अपने डिवाइन पावर्स आपके ऊपर बरसा रहे हैं. और आप बहुत पावरफुल, बहुत पॉजिटिव, बहुत सेफ फील कर रहे हो. और एक ऐसे में अच्छा सा गीत बजेगा तो आप बहुत प्यार से उस गीत को सुन सकते हैं.
संतान हो तुम सर्वशक्तिमान की.